This is the Epilogue audio experience.
Hello, listener. Thank you for tuning into this podcast where I bring to your ears inspiring conversations with some of the best artists, singers, composers, lyricists. Every week I talk to a musical genius to find out their creative discipline. I am Eva Bhatt and you are listening to 9XM Soundcast from India's leading music channel 9XM. Do subscribe to this podcast on Epilogue Media, your one stop for engaging and entertaining podcasts. The story of this Mumbai-based rapper is truly inspiring. Dhaval Parab, popularly known as rapper D. Evil, part of the Gully Gang Entertainment and recently signed up by the premier hip-hop label Mass Appeal Entertainment, is with us on 9XM Soundcast. With a track like Todun Tak in Farhan Akhtar's Tufan, D. Evil brings in that edgy vibe through his lyrics and hard-hitting rapping style. We also talk about his single Can't Check. Over to rapper D. Evil. Thank you so much for joining with us on 9XM Soundcast.
Hi. Thank you so much for having me.
तो चलिए शुरुआत करते हैं, यू नो, आपके बचपन से. हमें अपने बचपन में लेके जाएं और हमें बताएं कि किस तरह से म्यूजिक का और खास करके रैपिंग का इन्फ्लुएंस रहा आपकी यू नो म्यूजिकल सेंसिबिलिटी पर.
तो मैं बचपन से बॉम्बे में ही हूँ. मैं बचपन में दादर में रहता था पहले, और वहां पे थोड़ा मतलब माहौल ऐसा था कि वी हैड अ बिग फैमिली. मेरे अंकल थे और मेरे आंट आंटी आंट्स जो रहते हैं, हम लोग जिनको बोलते हैं आत्या, हम लोग बोलते हैं मराठी में
बिल्कुल
आत्या. मेरी आत्या तीन चार आत्या जो थी. एक छोटे से बहुत छोटे से हम लोग चौल के घर में रहते थे. घर बहुत छोटा रहता था. तो देन लाइक यू नो माय पेरेंट्स दे डिसाइडेड टू शिफ्ट मी टू लाइक ऑल ऑफ अस लाइक यू नो टू गेट अ हाउस समवेयर दिस साइड लाइक फ्रॉम दादर टू बोरिवली साइड बिकॉज यहाँ पे मतलब इट वाज लाइक यू नो डेवलप हो रहा था बोरिवली उस वक्त और घर वगैरह थोड़े सस्ते में मतलब तो सुविधा. उसके बाद मैं दादर से यहाँ मूव हुआ बोरिवली में, बट इट वाज स्टिल अ पार्ट ऑफ बॉम्बे क्योंकि स्कूल मेरा पहले दादर में था, फिर बोरिवली में शुरू हुआ था. डॉन बॉस्को में मैं था. इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो थोड़ा मतलब थोड़ा अलग था बिकॉज इट वॉज अ कॉन्वेंट स्कूल. मेरे दोस्त ऐसे मतलब जो थे वो हिप हॉप पॉप म्यूजिक बहुत सुनते थे, इंग्लिश म्यूजिक काफी सुनते थे बिकॉज उन लोग के घर में होता था. मेरे लाइक आई कम फ्रॉम अ महाराष्ट्रियन फैमिली, मेरे घर में इंग्लिश म्यूजिक इतना नहीं होता था, बट मैं थोड़ा बहुत यहाँ आवाज सुनता था. चौल में लोग प्ले करते थे थोड़ा बहुत जो पॉपुलर गाना हूँ
करेक्ट
ऐसे, तो वो सब मैं सुनता था. बट एकदम ही ऐसे इंग्लिश गाने सुनना और फिर उनको समझना भी, ये सब दौर मेरा जब शुरू हुआ जब मैं डॉन बॉस्को में था. तो मेरे दोस्त जो लोग भी थे वो लोग सब इंग्लिश म्यूजिक सुनते थे तो मुझे सुनाते थे. उस उन उन सारे के बीच में मेरे को एक हिप हॉप गाना सुनने में आया जो था टूपाक का, और उसका वीडियो था. उसमें मैंने देखा कि गाना भी है उसमें. टूपाक का एक गाना है चेंजेस करके, उसमें सिंगिंग भी है उसके अंदर और टूपाक का रैप भी है उसके अंदर. सिंगिंग कोई और कर रहा है बट मुझे वो पता नहीं था. मुझे लग रहा था कि ये एक ही बंदा कर रहा है सब कुछ.
Right.
फिर थोड़ा एमिनेम सुनने में आया, मुझे रैप सुनने में आया. तो ऐसा होता था कि पहले के मुझे मैं पोएट्री लिखता था स्कूल में, इंग्लिश पोएट्री लिखता था और बट मैं किसी को बताता नहीं था. मैं मतलब बिकॉज आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड अबाउट इट, क्या पता कोई लोग मुझे हंसेंगे या कुछ भी ऐसे, बिकॉज मैं बहुत सिली राइम्स भी करता था, सिली राइमिंग ऐसे मतलब करता था. तो फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि मेरे जो टीचर्स है उन लोगों में उनके डेस्क पे जाके रख देता था और फिर वो पूछती थी ये किसने लिखा है करके. तो फिर मैं सबके सामने कुछ बोलता नहीं था, फिर मैं जाके बोलता था मैम कि मैंने रखा था, मेरे को थोड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है इसके लिए, मैं कुछ ऐसा सबके सामने नहीं बता रहा था बट आपको दिखाना था, यू टेल मी हाउ इट इज, मेरे फीडबैक चाहिए बिकॉज आप ऑब्वियसली इंग्लिश के टीचर हो, पोएम्स वगैरह तो आप हमको सिखाते हो. तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं तुमको बताऊंगी. फिर उन्होंने पढ़ा उसे, कुछ टीचर तो इमीडिएटली पढ़ देती थी कुछ टीचर्स ले जाती थी टाइम लेके, अच्छे से उसको मार्किंग वगैरह करके, मेरा ग्रामर सुधार के, मेरा ये वो करके देती थी। कुछ टीचर्स एकदम ही तुरंत ही अप्रिशिएट करने लग जाती थी, बोलते अरे वाह तो कितना अच्छा है, तो पोएट्री लिखता है, ये कंटिन्यू करना लाइफ में, ऐसा ऐसा ही। तो ऐसे करके थोड़ा मुझे ये पता था कि एटलीस्ट हाँ मुझे राइम करने को आता है। या एक बार ऐसे हुआ था, एक फ्री पीरियड था स्कूल में, और एक टीचर आई और उन्होंने बोला कि आज तुम लोग का फ्री पीरियड है, तो तुम लोग मैं जो बोलूंगी आप वो करोगे, मैं तुमको एक वर्ड दूंगी और वो जो वर्ड है उसको लेके आपको उसके राइम्स जोड़ने हैं, 100 राइम्स, 100 राइम्स। तो उन्होंने मैरिज वर्ड दिया था, तो मैरिज, कैबेज, सैवेज, पैसेज, ये सारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे करके 100 लिखने को कहा था, किसी ने नहीं लिखे, सिर्फ मैंने लिखे, वो भी मैंने 100 नहीं लिखे, आई मैं 80 तक पहुंचा था, 89 80 तक। लेकिन मैंने बोला नहीं मैं करूंगा और, क्योंकि मुझे मजा आने लग गया। सब किसी ने नहीं किया, मेरे सब दोस्त बोल रहे थे क्या ये सब लेके बैठा है, ये सब क्या कर रहा है, सब मैरिज कैबेज ये सब क्या है। मैंने बोला नहीं मेरे को मजा आ रहा है, क्योंकि देखना सर सेम साउंड वाले वर्ड्स कितने, तो पता नहीं चला वो, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मजा आ रहा है, इट्स लाइक अ गेम लाइक। तो फिर मैंने डिक्शनरी सर्च करना शुरू कर दिया, फिर मैंने बुक्स बुक्स देखी इंग्लिश, तो उसमें कोई वर्ड मिल रहा है क्या नया वाला, ऐसे मैंने थोड़ा किया, ऐसे कर करके मैं 100, तभी कोई इंटरनेट वगैरह नहीं था हम लोग के
बिल्कुल,
पास,
ऑफ कोर्स,
तभी मतलब कंप्यूटर कंप्यूटर उस वक्त सिर्फ एक सब्जेक्ट रहता था स्कूल में, बस उधर तक
राइट,
उसी में कंप्यूटर को छूने मिलता था,
ऑफ कोर्स,
घर पे कंप्यूटर नहीं था या इंटरनेट तो कभी सुना भी नहीं था उस
सुना
वक्त,
भी नहीं था,
तो ये
यस,
सब हाँ। तो बुक्स में से ही, तो मैं लाइब्रेरी में एक दो बार जाता था ऐसे, कभी वहां से कोई बुक्स की कोई मतलब पोएट्री रिलेटेड जैसे राइमिंग बुक, वहां पे ऐसे बुक्स होती थी कि राइम्स ये वो वगैरह, वो मैंने देखी और मुझे मैंने रियलाइज किया वो बुक्स में जितने भी राइम्स है सब मैंने ऑलरेडी लिख दिए थे। तो ऐसे सब करके फिर मुझे पता चला कि राइमिंग इज लाइक माई फोर्टे, ये मुझे मजा आ रहा है ये करने में। और फिर जब ये गाने सुनने लग गया, मैंने एमिनेम को मैंने सुना जब मैं आई थिंक अराउंड 8th या 9th स्टैंडर्ड में था मैं उस वक्त स्कूल में, ये आई थिंक 2000 की बात होगी, 2000 2001 के उस वक्त, और तभी मैंने फर्स्ट टाइम एमिनेम का एक गाना सुना, और वो मैंने नोटिस किया कि ये जो है ये गाना कोई गा नहीं रहा है, ये गाना सिर्फ रिसाइट कर रहा है, जैसे पोएट्री रिसाइट करते हैं बट ये एक रिदम पे रिसाइट कर रहा है, तो वो गाने ऐसा लग रहा है और मजा आ रहा है, कुछ अलग है। मैंने पहली बार देखा कि मतलब रैप को मैंने नोटिस किया, क्योंकि उसके पहले बाबा सैगल वगैरह उनको
करेक्ट
उनको रैप करते
करेक्ट
सुना था, बट वो
करेक्ट
हमको पता नहीं था कि वो रैप है करके।
करेक्ट,
बट यहाँ पे जब हमने देखा नो बिगर स्केल इट्स हैपनिंग, सो मेनी वर्ड, सो मेनी थिंग्स, लाइक मेरे पास कैसेट प्लेयर था एक छोटा सा, वॉकमैन जिसको बोलते थे,
करेक्ट,
वो वॉकमैन था, तो उसमें मैं कैसेट डाल के रिवाइंड कर करके मैं सुनता था, कोशिश करता था ये समझने की कि क्या बोल रहे हैं, बिकॉज वो लोग अमेरिकन रैपर्स है, वो लोग अमेरिकन एक्सेंट में बात करते हैं,
बिल्कुल
और मैं इतना इतना मेरे को आदत नहीं था अमेरिकन एक्सेंट समझने का, या इंग्लिश भी मेरा काफी वीक था उस वक्त। तो मैं सुनता था और फिर मैं क्या बोला है तो मैं लिखता था, कभी कभी कुछ गलत शब्द मैंने लिख देता था, मैं कुछ और ही बोला मैंने कुछ और ही लिख दिया, फिर मुझे नहीं पता क्या बोल रहा है। बट मैंने ऐसे कर करके थोड़ा रैप में इंटरेस्ट लिया, फिर मैंने मेरे कजिन ने मुझे बताया कि इसको रैप बोलते हैं, इसको ये एक तरह का म्यूजिक है रैप म्यूजिक। तो फिर मैंने और देखा और गाने सुने और कैसेट्स मैंने खरीदे सुनने के लिए, सारे कैसेट्स एमिनेम के सारे एल्बम जितने भी थे सारे मैंने खरीदे मैंने सुने, और तो फिर मैं बहुत बड़ा फैन हो गया एमिनेम का, और फिर मैंने सोचा कि मुझे भी ये करना है जो ये कर रहा है। तो फिर मैंने उसी की तरह थोड़े से अपने खुद के लाइफ के ऊपर कुछ लिखना शुरू किया, जैसे ही वो लिखता है उसी उसी हिसाब से थोड़ा वैसे अब मैंने लिखना शुरू कर दिया। फिर बाद में इंटरनेट आया मेरे फोन पे, मेरे पास कलर स्क्रीन वाला फोन तभी होता था, वो फोन आया तभी मैंने पहली बार एक GPRS इंटरनेट ढूंढा
राइट,
उस पे, फिर मैंने हाँ GPRS इंटरनेट उस पे मैंने लिरिक्स ढूंढना शुरू कर दिया, जो मैं पहले स्कूल में जो मैं लिखता था जो गलत सुनता था मैं, अब मैंने इंटरनेट पे सर्च किए और इंटरनेट पे मैंने देखा कि क्या एक्चुअली बोल रहा है, और फिर मुझे पता चला अच्छा मैंने तो कुछ और ही सुना था, यहाँ पे तो ये कुछ और ही बोल रहा है, ये सारी चीजें होती थी। फिर ये तब तक लगे हम लोग का 10th स्टैंडर्ड शुरू हो गया था, थोड़ा पढ़ाई वगैरह का प्रेशर था तो इसकी वजह से, लेकिन फिर भी मैं मतलब मुझे वो जो प्रेशर था उसकी वजह से भी मुझे गाने लिखने का मन करता था, तो मैं और लिखता था बुक्स के पीछे लिखता था मैं। तो ऐसे कर करके फिर बाद में हम लोग कॉलेज शुरू हो गया, कॉलेज शुरू हो गया तो फिर बाद में मैंने दोस्तों के सामने कॉलेज में रैप परफॉर्म करना शुरू कर दिया। कॉलेज में काफी मुझे मतलब मैं पॉपुलर था उसके लिए कॉलेज में। मैं और डिवाइन सेम कॉलेज के हैं, बट
अच्छा
वो थोड़ा जूनियर है मेरे से। हाँ वो थोड़ा वो 2-3 साल छोटा है मेरे से, तो वो बाद में आया, बट मैं उसको जानता था, कॉलेज में था मेरे। वो भी मैं रैप करने के लिए पॉपुलर था, वो भी उसके लिए पॉपुलर था। हम लोग दोनों कॉलेज में ये करते थे, मिलते थे कभी, ऐसा क्लब्स वगैरह में जाके हम लोग भी परफॉर्म करते। तो ये वैसा टाइम था कि लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा फिर इंटरनेट आ गया, फोन में इंटरनेट आ गया, तो ये ऑरकुट वगैरह साइट्स जैसे थे, वहां पे रैप बैटल्स होते थे, तो वैसे ही मैं बाकी रैपर्स को भी मिला। तो ये मतलब बचपन से लेके जब भी मैंने शुरू किया यहाँ तक, मतलब मैं मुझे खुद ही मैंने अपने आप से ही कुछ रिसर्च किया। अगर उस वक्त अगर इंटरनेट होता हम लोग के लाइफ में तो काफी मतलब अभी काफी शायद बेटर होता हम लोग के लिए समझने को चीजें। बट अभी भी लाइक ऑलवेज लर्निंग तो हमेशा शुरू रहता है, तो अभी भी हम लोग का लर्निंग चल रहा है, और वो लर्निंग की वजह से अभी लाइक जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा जितना भी अच्छा हो रहा है उसी की वजह से हो रहा
बिल्कुल धवल, थैंक यू सो मच हमें आपके बचपन में आपके बचपन का हिस्सा बनाने के लिए. इट वाज ऑल सो विविड. एंड लेट्स लेट्स टॉक अबाउट कांट चेक योर इंडिपेंडेंट सिंगल. तो वो आपके दिल के बहुत करीब होगा. सो लेट्स लेट्स टॉक अबाउट द मेकिंग ऑफ दैट सिंगल.
कांचेक। हाँ तो कांचेक ऐसा हुआ था, हम लोग गए थे, हम लोग क्या करते हैं, वी डू दिस थिंग कॉल्ड सॉन्ग राइटिंग कैंप गली गैंग में। तो सॉन्ग राइटिंग कैंप ऐसे होता है कि कोई भी एक लोकेशन हम लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग एक विला या ऐसा बंगलो या जो भी हम लोग हायर करते हैं, जहाँ पे
राइट
हम हमारे अभी टीम में आई थिंक 25 लोग है, 20-25 लोग है। तो उन लोगों को सबको अकोमोडेट करने जितना बड़ा हम लोग जगह लेते हैं, जहाँ पे सिर्फ हम ही लोग हो और कोई हो नहीं, जैसे
राइट
विलाज होते हैं या बंगलोज होते हैं मिलते हैं, जैसे लोनावला में या गोवा में। हम लोगों ने दो बार गोवा में किया कैंप और एक बार लोनावला में किया। तो एक कैंप था ये जो कांचेक, मैंने गोवा में पहला जो हमारा फर्स्ट कैंप था वहां पे मैंने करण कंचन के साथ ये गाना बनाया था। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सारे सब लोग जाते हैं, अपना सेटअप लेके जाते हैं हम लोग वहाँ पे, स्पीकर्स, कीबोर्ड, इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी गिटार
वाह
वगैरह जो भी ले जाना है, और फिर वहाँ पे सारे एक एक रूम में होते हैं और हर कोई अपने रूम में बैठ के, हम
क्रिएट
लोग दो
करना.
सेटअप होते हैं। हाँ दो दो सेटअप होते हैं, एक होता है करण कंचन का सेटअप जहाँ पे बीट बीट्स वगैरह बनती है होता है, और एक रिकॉर्डिंग सेटअप होता है जहाँ पे शारुल जो है हमारे रैपर है गली गैंग से, उनका एक सेटअप होता है जहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है और वहाँ पे भी बीट्स वगैरह होती है। तो जहाँ पे भी जो भी फ्री होगा यू कैन गो टू दैट पर्सन रूम एंड यू कैन क्रिएट समथिंग। आपका टाइम स्लॉट होगा, आपको बुक करेंगे टाइम स्लॉट, तो ये ऐसा सब होता है, और फिर लोग जाते हैं गाना बनाते हैं। तो मैंने करण के साथ ये तभी बनाया था, करण कंचन के साथ ये गाना कांचेक। और ये मतलब ऐसा था कि मैं तभी गोवा में लिख नहीं पाया था क्योंकि मुझे मुंबई में लिखना था ये गाना, यहाँ का मुझे गाने के बीट में यहाँ का बॉम्बे का वाइब था काफी। तो मैं बॉम्बे आया, मैंने बॉम्बे में गाना लिखा। गाना बेसिकली कांचेक का मतलब होता है टू स्लैप। तो बेसिकली ये गाना, दिस सॉन्ग इज अबाउट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ पीपल हु डू रॉन्ग, जो जो सुनते नहीं है कोई भी बात, बार बार एक ही चीज करते हैं, गलत चीज बार बार करते हैं, दे डिजर्व अ स्लैप, विच इज कांचेक। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, कैसे आपको कांचेक मिल सकता है। एंड ये गाना ऐसे मतलब जस्ट टू लाइक टू नो शो पीपल के मत करो, बहुत गलत चीजें हो रही है, आप अभी भी कोरोना हो गया फिर भी आप थूकते हो सड़क पर, या यूरिनेट करते हो पब्लिक में, या ये सारी चीजें करते हो, या लड़की छेड़ते हो, या कुछ भी करते हो, मतलब जो गलत काम है, स्कैम करते हैं, या स्कैंडल्स होता है, या फिर पैसे वैसे का ये होता है। तो मतलब जो भी सारी चीजें है वो हमने मतलब मैंने उसमें बोली है, गाने में बोली है, और उसका वीडियो भी ऐसा है कि उसका स्टोरी ऐसा है कि मैं आई एम प्लेइंग अ पुलिस पुलिसमैन, और मेरे साथ काफी काफी फेमस कंटेंट क्रिएटर्स है, सौरभ घाड़गे वाइन्स इज प्लेइंग लाइक अ कांस्टेबल विद मी, एंड फोकस्ड इंडियन एंड जस्ट नील, ये लोग दो जन है उसमें जो हुआ वेरी पॉपुलर ऑन
यस
इंस्टाग्राम। दे आर लाइक यस, आपने भी उनके काफी देखे होंगे आई एम श्योर,
यस
उनके
ऑफ
रील्स
कोर्स
वगैरह।
ऑफ कोर्स.
तो ये लोग बहुत ही फन लोग है, दे आर लाइक अमेजिंग। वन ऑफ माई वेरी गुड एक्टर फ्रेंड्स रोशन चौहान ऑल्सो इज इन इट, यू विल सी हिम इन सम फिल्म्स नाउ वेरी सून।
क्या बात.
सो ये सारे मेरे दोस्त है, इनसे मैंने कनेक्ट किया था, फोकस्ड इंडियन सौरभ और जस्ट नील, इनसे मैंने कनेक्ट किया था। द वीडियो इज वेरी वेरी फनी, मैं अभी भी देख के हंसता हूँ, इतना फनी वीडियो है वो। सो इट्स एंड दे आर अमेजिंग एक्टर्स, दे हैव सच ग्रेट कॉमिक टाइमिंग। अगर आप देखोगे उनके रील्स में तो आपने देखा ही होगा
यस
किस तरह का
यस
उनका कॉमिक टाइमिंग है। वो लोग रीजनल कंटेंट मराठी में भी कंटेंट बनाते हैं वो लोग, तो इन लोगों के साथ में काम करना। और जेडी फ्रॉम गली गैंग जो हमारे लिए वीडियो शूट करते हैं, ही ऑल्सो डीजे, उन्होंने वीडियो शूट किया, जिन्होंने मेरे गली में का वीडियो शूट किया है,
क्या बात है।
द यू नो द वन द ओरिजिनल शूटर ऑफ गली गैंग, तो उन्होंने ये वीडियो शूट किया। दिस इज माय फर्स्ट सोलो वीडियो विद हिम, उसके पहले मैंने बस थोड़े मतलब साइफर या कोलैबोरेशन शूट किया था, बट दिस इज माय फर्स्ट वीडियो म्यूजिक वीडियो विद हिम।
वाह,
सो
बट आई
ये
कांट
कांचेक का
वेट
मतलब
टू
यही ऐसा स्टोरी
लिसन
था।
टू यू बिकॉज यू नो द टॉपिक द थीम ऑफ द सॉन्ग इज यू नो सो यू नो परफेक्ट यू नो फॉर टुडेज टाइम। सो लेट्स हैव कांट चेक एक्सक्लूसिवली ऑन 9XM साउंडकास्ट।
अपन तान के खींचे पूरे बंबई की आवाज तेरे कान के नीचे सीधा थो बड़े पे लाइन तापमान भी ठीक है, एक चापटी में छोटे तू झूल देगा, लेफ्टी से फटका दू राइट से काली हूल देगा, रस्ते पे मूतेगा पट्टे से फूटेगा, बच्चों को लूटेगा झटके में टूटेगा थूकेगा, गुटका बना दूंगा बुटका, कान के नीचे गरम करके सेकूंगा भुट्टा, जब पड़ती है चापटी पब्लिक है कापती, सुनेगा 10 बात भी फिर मारेंगे लात भी, जो नेता करेगा घोटाले पूरी पब्लिक मिलके उसको धो डाले, कोने में बैठ के तू रोता रहे, जब तक मैं मारू नहीं तब तक तू सोता रहे, अब तक तू सुधरा नहीं क्योंकि मेरा लाफा तेरे कान के नीचे उतरा नहीं।
दिस इज परफेक्ट फॉर मुंबई पुलिस, दिस इज
यस
परफेक्ट
यस
एंथम।
यस आई एम प्लेइंग अ मुंबई पुलिसमैन इन द वीडियो आल्सो, सो दैट्स हाउ आई गॉट द होल वाइब ऑफ इट।
क्या बात है, लवली लवली। एक और खास बात जो मुझे इस वक्त आपसे पूछनी है वो ये कि आप जैसे कई यू नो आर्टिस्ट अभी जो फिलहाल हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट, उनके मन में शायद यू नो ये क्वेश्चन होगा जो जो काफी यंग हैं कि कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, या फिर इट मस्ट बी अ बिग चैलेंज फॉर देम व्हेन दे टेक अप यू नो हिप हॉप और जस्ट इवन यू नो एनी सच यू नो फील्ड एज अ करियर। तो बहुत मुश्किल भी हो जाता है अपने पेरेंट्स को यू नो बिकॉज इट्स नॉट कन्वेंशनल, जैसा कि आपने भी फेस किया होगा। तो वो कैसे यू नो कोई यू नो अपने पेरेंट्स को कन्विंस भी कर सकता है, या फिर हाउ कैन वन यू नो ट्राई टू यू नो एक्चुअली विन दैट फर्स्ट बैटल ऑफ देयर
देखो
लाइफ।
पहले तो ये डिपेंड करता है कि उनके पेरेंट्स उनको क्यों मना कर रहे हैं कोई चीज करने के लिए। मे
जी
बी दे शुड आस्क देमसेल्व्स,
जी
अगर क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स आपको ट्रस्ट करेंगे, बिकॉज पेरेंट्स आर ओनली डूइंग दिस बिकॉज दे केयर फॉर यू।
राइट
उनके खिलाफ जाना, उनको रिबेल करना, या उनके उनके मिस्टेक्स निकालना व्हाइल दे आर रेजिंग यू इज नॉट राइट। बिकॉज इफ लाइक जब लाइक अभी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे भी शुरुआत में मेरे घर वालों ने मुझे भी मना मुझे उन्होंने मुझे रोका नहीं, बिकॉज वो लोग मोस्टली तो मेरी मॉम और डैड समझ रहे नहीं थे कि मैं कर क्या रहा हूँ एग्जैक्टली, हिप हॉप क्या होता है रैप क्या होता है, उनको आइडिया नहीं था। बट जिनको भी आइडिया है, जो भी पेरेंट्स को, तो अगर वो मुझे इसलिए रोक टोक लगाई जाती थी कोई भी ऐसी चीज करने से, क्योंकि मैं पढ़ाई में वीक था और ये मेरी गलती थी, बिकॉज पढ़ाई पढ़ाई वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिस्ट बनने के लिए। अगर आप आर्टिस्ट हो तो यू नीड टू हैव डिसिप्लिन पहली बात तो इन लाइफ,
वेरी गुड
क्योंकि अभी क्योंकि क्योंकि अभी मैं इस उम्र में लाइक आई एम 34, मैं 34 साल का हूँ अभी, और ये उम्र में आके मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हो रही है कि अगर मैं ऐसे करता या ये मेरा डिसिप्लिन होता तो आज शायद बेटर होता होती
क्या
चीजें
बात
मेरे
है।
साथ, यू नो। एंड सो आपके पेरेंट्स अगर आपको कुछ बोल रहे हो तो यू नीड टू कम्युनिकेट विद देम एंड आस्क देम कि क्या प्रॉब्लम है आपको, कि मैं क्यों नहीं करूँ। अगर वो बोल रहे कि देखो पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है तुमको, ये हो सकता है, उनको बोलना कि देखो मैं ये तो मतलब मैं इसको कर सकता हूँ परस्यू, बट उसके अलावा देर आर अदर थिंग्स आई कैन डू ऑल्सो टू अर्न मनी लाइक अ जॉब, क्योंकि हमने सबने जॉब के साथ में हिप हॉप किया था। उस वक्त तो हिप हॉप पॉपुलर भी नहीं था, हिप हॉप से कोई
बिल्कुल
पैसे भी नहीं आते थे। तो अगर लाइक अभी तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है सारे रैपर्स को कि आपको कुछ ना कुछ मिले, रैपर्स के रिक्वायरमेंट आते हैं जैसे कि गाने के लिए, आर्ट फिल्म्स के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ना कुछ, तो हिप हॉप इज एक्चुअली नॉट जस्ट म्यूजिक, इट्स अ लाइफ स्टाइल। वो आपको हर क्रिएटिव प्रोसेस सिखाता है हिप हॉप। मैं अगर आज आई स्टार्टेड राइटिंग हिप हॉप सुन के, अगर वहां से इन्फ्लुएंस, अगर मैं अगर लिखना सीखता हूँ हिप हॉप का जो प्रोसेस है, दैट्स एप्लीकेबल ऑन ऑल इन ऑल द फील्ड्स। इन ऑल क्रिएटिव फील्ड्स, दैट्स हाउ अ मूवी इज ऑल्सो मेड. जैसे एक रैप बनता है, जैसे एक गाना बनता है, वैसे एक फिल्म भी बनती है उसी प्रोसेस में. इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड. तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ नहीं है तो यू नीड टू बी एजुकेटेड इनफ. आपको पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी, यू हैव टू एक्सपीरियंस डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ. एजुकेशन लेना भी एक एक्सपीरियंस है और वो इम्पोर्टेंट है लाइफ. तो कुछ पेरेंट्स शायद इसीलिए मना करते हैं अपने बच्चों को कि उनको शायद फाइनेंशियल इश्यू हो सकता है बाय फॉलोइंग अ करियर जो स्टेबल नहीं है, या फिर उनको ऐसा लगता रहेगा कि ये पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, या योर पेरेंट्स वांट यू टू डू समथिंग एल्स.
राइट.
इट्स तभी जाके आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज व्हाट यू आर एक्चुअली गुड एट. एंड हिप हॉप में अगर आपको हिप हॉप से प्यार है, अगर इफ यू रियली पैशनेट अबाउट हिप हॉप, हिप हॉप में सिर्फ रैप करना नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है. तो मे बी यू कैन डू समथिंग दैट यू आर गुड एट. कुछ लोग रैप नहीं कर पाते अच्छे से, सो दे शुड नॉट, उनको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए. Like, you know, try and do something else for hip-hop. अगर आपको hip-hop इतना पसंद है तो parents बोलते हैं, it's, there's a reason also for it, and if you want to know the reason, you should always ask them. Communication उनके साथ करना उनको भी अच्छा लगता है. तो मैं तो यही करता हूँ. अगर मुझे मेरी मॉम मुझे किसी चीज के लिए अभी भी टोकती है, बिकॉज मैं उनके साथ ही रहता हूँ, अभी भी टोकती है, अभी भी लेक्चर मुझे देती है, तो मैं उनको पूछता हूँ कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है ये करने में, तो वो मुझे समझाती है, तो मैं उनको बताता हूँ देखो मेरी ये मजबूरी है. इट्स अबाउट कम्युनिकेशन. तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छा कर रहे हो तो आप एक लाइक यू नो अपना करियर आगे जाके कर सकते हो विदाउट देम हैविंग एनी प्रॉब्लम. उनके साथ बात करो और समझो कि वो क्यों बोल रहे हैं. अगर कोई चीज ऐसी बोल रहे हैं जो सही है तो उसे फॉलो करना.
वाह, बहुत ही जरूरी एडवाइस आपने दी है डी एविल. एंड डी एविल आई एम गोइंग टू टेक सम टाइम.
डी एविल दैट्स इट.
सो मुझे बताएं कि यू नो नाम की बात चल रही है, तो हाउ डिड दिस यू नो पेन नेम हैपन? किसने सोचा और कैसे हुआ फ्रॉम धवल टू डी एविल?
एक्चुअली काफी नाम बदले, मतलब ज्यादा नहीं, काफी एक पहले मेरा नाम हसलर हुआ करता था, फिर बाद में मैंने वो चेंज कर दिया. मैंने सोचा कि तो ऐसा हुआ कि दिस इज राखी सिस्टर ऑफ माइन, हर नेम इज अरण्या जोहर, शी इज ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड शी इज अ पोएट ऑल्सो. And she suggested me. So her brother is another rapper. His name is Ankur Johar, Encore. And he and me, we were a part of a crew. We were a crew actually. We were like a team. We should rap together. We were like a band, you can say, like two people. So his sister would, like, you know, she suggested me that this name D apostrophe evil. That's D evil, that goes really well with your personality because you are a very, very notorious person and you are like, you know, very, very mischievous also and all that. So I was like, okay, fine. So I kept it and then it wahan se wo aise reh gaya.
Wow. And the fact that you were, you know, talking about jo advice aapne di, also the fact it's very important to identify कि क्या आपको hip hop इसीलिए choose करना है क्योंकि उसमें वो glamour है या फिर उसमें popularity है, you know, instant popularity. Is that the route that you are taking, you know, interest in hip hop, or you are really passionate about, you know, the art and the poetry and the expression, which is the essence, which is the soul of hip hop? तो ये भी शायद identify करना बहुत जरूरी है आजकल की young generation को भी.
हाँ, कैसे ना, उसमें कैसा है कि ये जो आपने बोले दो पॉइंट्स है वो एक्चुअली दोनों एक ही में आते हैं. मतलब अगर आपको या तो यू फॉलो इट, एंड वंस यू फॉलो इट आपको ये फेम पैशन ये सब आएगा ही आएगा, वो इसमें कोई वो नहीं है. बट अगर आप इवन इफ यू वांट टू गेट इनटू हिप हॉप फॉर दैट, फॉर जस्ट फेम एंड पॉपुलैरिटी, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ. बिकॉज ऐसे होता है ना कि कुछ लोग आते हैं उसके लिए और फिर वो वही चीजें फॉलो करते हैं, उनको फेम और पॉपुलरिटी तो मिलेगा नहीं, उल्टा बदनामी ऐसे लोगों की होती है कि ये मतलब जैसे बोलते ना ये वॉन्नबी लड़का है, इसको ये ही करना है वही करना है. तो इफ यू आर ओके विद दैट देन कूल. अगर आपको सिर्फ फेम पॉपुलरिटी चाहिए, अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, बस सिर्फ फेम और पॉपुलरिटी चाहिए, ऐसे ही बहुत लोग हैं जिन लोगों के पास फेम है, जिन लोगों को लोग जानते हैं पहचानते हैं, बट उनको रिस्पेक्ट नहीं है बिकॉज लोग गलत चीजों के लिए जानते हैं, इसको लोग इनफेमस बोलते हैं ऐसे लोगों को. सो ये है हिप हॉप का स्ट्रेट है, यू आर इधर फेमस और इनफेमस. इनफेमस फॉर द रॉन्ग रीजंस. पीपल से लॉट ऑफ थिंग्स, इनअप्रोप्रिएट थिंग्स, गलत चीजें बोलते हैं अपने गानों में, ऑफेंसिव चीजें बोलते हैं अपने गानों में. उन लोगों को लगता है अरे क्यों लोग ऑफेंड होते हैं, लोग ऑफेंड होते हैं बिकॉज सेंटिमेंट्स जुड़े हैं उन लोगों के. सो ये सब चीजें समझना और ये सब चीजें करना गानों में, ये इससे आपको पॉपुलैरिटी तो मिल जाएगी, फेम तो मिलेगी, बट रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा. और रिस्पेक्ट इज फॉर एवर. अगर आप कोई भी चीज करते हो, रिस्पेक्ट फ्रेजाइल होता है, बट इट्स फॉर एवर, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. अगर एक बार आपको रिस्पेक्ट मिलता है तो आपको रिस्पेक्ट मिलता है, बट इफ यू डू समथिंग रॉन्ग, अगर आप इनफेमस हो, एक टाइम पे लोग आपसे नफरत करते हैं, फिर आपको भूल जाते हैं, बोले यार ये तो बकवास आदमी है, अब कब तक इसकी बकवास देख के हंसेंगे हम, तो दे विल फॉरगेट यू. सो कोई भी चीज अगर आपको करनी है, यू डू इट द राइट वे, व्हाटएवर रीजन यू आर डूइंग इट फॉर, उसको सही तरीका है उसको करने के लिए. गलत तरीके से करोगे तो आपको नुकसान होने वाला है. और अगर भले आपको कोई भी इंटेंशन हो, अगर आपका अच्छा इंटेंशन भी हो या बुरा भी हो, इट्स जस्ट अ प्रोसेस ऑफ डूइंग इट. रैप करना बहुत बड़ा एक स्टडी है खुद का. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू नीड टू लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ, एंड दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम. अगर आप कुछ लोग होते हैं ना, खो जाते हैं, क्योंकि लोग पॉपुलर रैपर्स को देखते हैं और वो उनकी तरह रैप करने की कोशिश करते हैं, तो दे एंड अप साउंडिंग लाइक देम. ये सारी चीजें बहुत होती है हमारे हिप हॉप में. मैंने बहुत नोटिस किया, काफी लोग रैपर्स से, बड़े रैपर्स से इन्फ्लुएंस्ड होके गाने बनाते हैं, सेम साउंड करते हैं, मोनोटनी है, बट आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत यूनिक है. सो अगर इफ यू बी योर सेल्फ, देन दे कैन नॉट बी एनीबडी एल्स लाइक यू. और इवन इफ देर इज, देन पीपल नो लाइक यू नो दैट इट्स नॉट देम, लाइक इट्स यू.
And I really appreciate that you do believe as a rapper, as an artist, ki bahut badi responsibility hai, you know, of every rapper or every musician or any artist, ki you know, jis tarah ke words you know likhe ja rahe hain, jis tarah ke lyrics hain, they will really make a lot of difference, negative and positive. So it's all in your hands. So let's talk about your independent music. Pre-Gully Boy, post-Gully Boy, how life changed, क्या क्या मुश्किलें आई, कुछ हमें उसके बारे में भी बताएं.
मुश्किलें तो अभी भी आ रही है, मतलब वो तो रुकता नहीं है, वो तो हमेशा गायल है, तो चलते आ रहे हैं बहुत टाइम से. बट हाँ, काफी चेंज हुआ मेरे लाइफ में हिप हॉप की वजह से. जब से मैंने रैप करना शुरू किया, मेरे सोचने का तरीका बदला, मेरा माइंड, मेरा जो विजन था वो थोड़ा एक्सपैंड हुआ, मेरे क्रिएटिविटी में थोड़ा फर्क पड़ा. तो काफी ऐसा हुआ, मतलब क्योंकि हिप हॉप जो है आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपको अलग अलग लोगों के बारे में सिखाता है. जैसे अलग अलग रैपर्स को हम सुनते हैं यूएस में या इंडिया में या जहाँ पे भी, उनकी सबकी सबका जो पर्सनालिटी है वो सब देख के यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज गाइज, लाइक यू नो यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. एंड कैसे भी कोई भी रैप कर रहा हो, असलियत हमेशा म्यूजिक में छुपती नहीं है, इट शोज इन योर सॉन्ग. तो ये बस आपको ना तजुर्बा होना चाहिए ये सब समझने का कि कौन क्या कर रहा है. ये बहुत ज्यादा सुनने से ही, मतलब यू नो आजकल लोग सुनते नहीं है, सिर्फ दे आर ऑलवेज इनटू लाइक यू नो अपने अपना अपना शुरू कर देते लोग. तो इस वो सब चीजें लोगों को लाइक थोड़ा संभालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप आर्टिस्ट हो तो यू हैव टू कीप योर इयर्स ओपन अराउंड एंड टू नो, बिकॉज देन हम लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग कोई मैसेज लोगों तक पहुंचाए. अगर हमारे पास ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर हमारे पास ही अपडेट नहीं है, तो इट्स वेस्ट बीइंग व्हाटएवर यू आर. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज, मतलब ये सब चीजें करने के लिए सीरियस ही बनना पड़ेगा या एकदम ही ऐसे कि पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट ही रखना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है. आप फन वे में भी कर सकते हो ये सारी चीजें एज एन आर्टिस्ट. आपको क्रिएटिविटी, बस आप क्रिएटिव, मतलब आप आर्ट क्या होता है कि इट्स योर एक्सप्रेशन इन योर वे. इट कैन बी अबाउट एनीथिंग, इट कैन बी अबाउट the situation that you're going through, it can be about somebody else's situation also, but it's always in your personality and in what you feel about it. Aap kya sochte ho kisi cheez ke bare mein, aapka jo kya bolte hai, aapka jo take hota hai, what's your take on it, waisa. So it's no wo waisa wo bahut important hai ek artist ke paas hona, like you should have an opinion,
right?
And wo us opinion ko express karne ke liye you have your art form. So hip hop mera art form hai. To ye sari cheeze main seekha ke you know hip hop ki wajah se ke you have a voice and you should always you know put it out. Ye bahut ek important cheez maine dekhi mere after I started doing hip hop. Jab maine gaane release karne shuru kiye, mujhe shuruaat mein itne zyada kuch fans nahi the ya फैंस थे, बट वो मतलब वो भी रैपर्स ही थे मेरे जैसे, मेरे दोस्त थे वो लोग सब थे. दे ऑलवेज बिलीव्ड इन मी एंड दे सेड दैट लाइक यू नो यू वी बिलीव दैट यू गोना जस्ट डिवाइन इज वन ऑफ देम, एनकोर इज वन ऑफ देम. सो ये सारे जो है लोगों ने मुझे हमेशा बोला कि यार वी बिलीव इन यू एंड यू आर डूइंग प्रीटी गुड एंड तुमको कंटिन्यू करना चाहिए, भले ही तुमको अभी रिजल्ट नहीं आ रहा हो बट बाद में तो डेफिनेटली आएगा. देन आई सॉ डिवाइन मेक इट इन लाइफ, ही वाज जस्ट लाइक यू नो, उसने एक गाना रिलीज किया और एक के बाद एक उसके गाने सब हिट होने लगे. एंड ही ऑलवेज टोल्ड मी दैट यू आर ऑल्सो दैट गुड, तो तेरे भी गाने हिट होंगे बट देर इज समथिंग दैट यू नॉट डूइंग राइट व्हिच यू नीड टू फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ. सो मैंने काफी मतलब फिगर आउट किया अपने आप को या जो भी है. और तभी मैंने ये रियलाइज किया कि लाइक यू नो जो चीज मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ. पहले हम लोग इंग्लिश में रैप करते थे और इंग्लिश मेरा पहले स्कूल के टाइम से बहुत वीक रहा है. मैंने मतलब सीखा है कैसे तो भी करके, मैंने गानों से जो भी सीखा है गानों से ही सीखा है, इंग्लिश रैप सुन सुन के सीखा है. तो ये बट फिर भी इट वॉज लाइक यू नो हिंदी, जैसे मैं बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं हम लोग, और तो मैंने सोचा कि उसी लैंग्वेज में मुझे मेरे गाने बनाने चाहिए ताकि मेरे पहले जो मेरे साथ में आजू बाजू के लोग हैं उन लोग पहले समझे, फिर उसके बाद मैं आगे जाके लाइक यू नो बाकी बाकी लोगों को सुना के उनको समझा सकता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ अपने गाने. तो ये काफी कैसा, दीज वर द डिफिकल्टीज ऑल्सो, ये सारे चैलेंजेस थे. लोग मतलब कहीं पे भी जाते थे तो लोग पैसे मतलब देने में हिचकिचाते थे बिकॉज वी आर नॉट फेमस, ज्यादा पैसे नहीं मतलब ज्यादा हम लोग उनको ज्यादा बिजनेस नहीं ला सकते, बट दे नो दैट द सॉन्ग्स आर गुड, दे नो एवरीथिंग इज गुड. बहुत लोगों ने फंसाने की भी कोशिश की गलत डील्स देकर, और ये सारा बहुत कुछ हुआ. बट आई एम ग्लैड एंड आई एम वेरी लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक डिवाइन, बिकॉज ही बीइंग ऑन गली गैंग राइट नाउ, इट्स ऑलवेज लाइक वी बीन शोन द राइट पाथ एज आर्टिस्ट, एज लाइक वी हैव चैतन्य, you know, on, yeah. Like you know who's, yeah, like who's always like if whenever it comes to like even when it comes to money, he'll tell us that like you know, tell us about investments, tell us about the trends in investments. Kya aajkal kya hai? Where can you put your money? Taki aapko double returns. They're always thinking about the artist, financially always available, and supporting also like supportively also like you know, for like these like divine is somebody I can always go and meet or always go and call up anytime if I have any sort of problem. And he's my friend. We know each other since I don't know, I think 15 years now. I've known him for 15-20 years now. We've been the best friends and I can always talk to him, he can always talk to me, and it's I don't know, like it's just we just have that connection where we know like you know something's wrong with each other, and he would always ask me, is everything good with you? And I'm like, yeah, everything is good. So yeah, like you know, I'm lucky to be on this, like, but us waqt kaisa hota tha ki wo matlab hum logo ko itna zyada support nahi tha, to log kuch na kuch karte the humko fasane ke liye, ya galat cheeze batate the ya galat deals batate the. You know, all these things were going on.
But also, ki, you know, after Gully Boy, ye bhi hua ki, you know, Hindi rap and even regional language mein jo rap hai, wo rapping, wo bahut hi popular hone laga. And we started to own up to our, you know, hamare देश के जो रैपर्स थे, यू नो टिल नाउ वी वर ओनली लुकिंग अप टू यू नो नेम्स लाइक Eminem एंड अदर रैपर्स, बट suddenly we realize that hamare paas hi bahut hi bada you know khazana hai you know of rappers, and jo hindi language mein jo rapping kar rahe hain ya fir marathi language mein jo rap kar rahe hain ya fir you know a different you know languages of our country, I think they have become the highest selling point today at this stage.
Yes, actually kya hua ki मैंने काफी काफी जगह मैंने काफी जॉब्स किए. जैसे मैं रेडियो में जॉब करता था, आई वाज मैं शोज प्रोड्यूस करता था तब भी, और रेडियो में क्या पूरा दिन जो मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स है पूरा दिन प्ले होते थे, एंड दे वर ऑल बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग्स. रेडियो पे इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो रेडियो पे नहीं आता था.
Correct.
तो वहां से लाइक वहां पे काम करने से मुझे क्या पता चला कि म्यूजिक मतलब किस तरह का लोगों को पसंद है, व्हाट आर द like you know the most popular words that people relate to and all that. So ye sab cheeze maine wahan pe samjhi aur maine ye realize kiya ki abhi filhal in our country agar mereko gaane agar मैं चाहता हूँ लोग मेरे गाने सुने या अप्रिशिएट करें या उनको समझे एटलीस्ट, तो आई शुड स्टार्ट रैपिंग इन द रीजनल लैंग्वेज दैट आई हैव। बिकॉज ऐसा हुआ कि हम लोगों को समझ में ये समझ में आने लग गया कि लोग इसको ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे इंग्लिश गाने, अगर अभी भी आप मेरे चैनल पर जाकर देखोगे, मेरा जो इंग्लिश गाना है उसको इतने व्यूज नहीं आए जितने मेरे हिंदी गानों को आए। वो हमेशा ऐसा होता था कि 1,000 अगर आपके इंग्लिश गाने को 1,000 व्यूज आ रहे हैं तो आपके हिंदी गाने को 10,000 आएंगे, कितना बड़ा डिफरेंस था। एंड बैक देन ज्यादा लोग, मतलब ये 2010-11 के टाइम पे ज्यादा लोग ये नहीं करते थे, हिंदी रैप नहीं करते,
बिल्कुल
बहुत ही कम लोगों ने, हाँ बहुत ही कम लोगों ने शुरू किया था उस वक्त पॉपुलर सर्किट में। तो फिर उससे हम लोगों को मतलब ज्यादा रिस्पॉन्स आने लग गया। जैसे मेरे गली में वॉज अ वेरी वेरी बिग हिट एट दैट टाइम, एंड यू नो लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक वर रियली बिग हिट, लाइक जैसे नेजी का गाना वॉज अ हिट दैट टाइम, एंड डिवाइन का ये मेरा बॉम्बे वॉज अ
हिट, ये मेरा,
या तो ये सारी चीजें। तो फिर सब लोगों ने सोचा कि या वी शुड ट्राई डूइंग हिंदी। मैंने हिंदी इसलिए शुरू किया बिकॉज आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन इंग्लिश, मेरे को इंग्लिश ग्रामर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता था कि मैं गलत ग्रामर बोलता था या फिर मैं उसको स्लैंग्स के पीछे छुपाता था मैं टू शो के हाँ मैंने इससे, तो स्लैंग है, कोई बोले ग्रामर अगर मेरा करेक्ट करे इंग्लिश में तो बोलता था इट्स स्लैंग है तो या ऐसे। फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी छोड़ो, मैं अपने जो जो मैं जो लैंग्वेज में बोलता हूँ रेगुलरली उसमें बात करता हूँ तो थोड़ा बेटर रहेगा। उसकी वजह से मेरा डिलीवरी भी चेंज हो गया था, मतलब मैं और ज्यादा थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था बोलने में माइक पे, क्योंकि फिर यहाँ पे मुझे यू नो मिस्टेक्स का कॉन्शियसनेस नहीं था कि मैं मिस्टेक करूंगा।
बिल्कुल, और यू नो वही जो कन्वर्सेशनल यू नो बात है आपके यू नो लिरिक्स में, वो चीज हमें सुनने को मिलती है इन तोड़ून टॉक आल्सो। यू नो इतना कॉन्वर्जेशनल है, जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे आप किसी को, किसी में जोश अगर जगा रहे हैं, किसी को इंस्पायर करना है तो हम कैसे बोलेंगे, तो वो उसी तरह से हुआ है, इसलिए इट इज सो रिलेटेबल और वो एक एंथम यू नो बन चुका है। सो तोड़ून टॉक इज लाइक यू नो नॉट, ऐसा कोई नहीं है कि ओ माई गॉड यू नो बहुत ही हैवी ड्यूटी रैपिंग चल रही है एंड यू नो हाफ ऑफ द पब्लिक कैन नॉट यू नो रिलेट विथ इट। वो एक कम्युनिटी वाली जो फीलिंग आती है यू नो वो वही एक बहुत ही अच्छी बात है आपकी यू नो रैपिंग स्टाइल में। इट इज सिंपल, इट इज रिलेटेबल, इट इज वेरी मच यू नो जिसे कहते हैं अपना।
थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड आपको पसंद आया। तो ये हाँ ये गाना मतलब मुझे सिचुएशन ही ऐसा दिया गया था कि फरहान अख्तर इज गोइंग टू बी ट्रेनिंग on this song,
right.
He's going to be training to be a boxer, and usme matlab mostly bada role play karta hai the lyrics that I've written, aur lyrics ki wajah se wo delivery aaya, aur second reason for that is that Dub Sharma ka jo beat hai, unhone jo beat diya hai background mein, wo that also brings up the tone of jo beat hota hai hum log rappers ka, that sets the tone of our rap. That's what I do. Mujhe main apne aap mere mein se niklega. अगर आप थोड़ा लो टोन बीट दोगे तो मैं भी एकदम लो और एकदम स्लो स्लो रैप करूंगा, फिर ऐसा था। तो वो अपने आप टोन अपने आप सेट हो गया बिकॉज ऑफ द बीट, और फिर लिरिक्स भी आ गए बिकॉज सिचुएशन मुझे ऐसे समझाया गया था फिल्म में कि फरहान अख्तर इज गोना बी अ बॉक्सर, बॉक्सिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं देखता हूँ बॉक्सिंग तो, और बॉक्सिंग पे काफी मूवीज भी मतलब मैंने देखी है, जैसे रॉकी है या फिर मोहम्मद अली का जो डॉक्यूमेंट्री है, वो सारी चीजें देखी थी मैंने, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैंने बोला वाओ बॉक्सिंग के ऊपर मुझे गाना लिखने का, एंड द ब्रीफ दैट वाज गिवन टू मी दैट द कैरेक्टर ऑफ फरहान अख्तर दैट फरहान अख्तर इज प्लेइंग, उनका जो कैरेक्टर है वो डोंगरी से है, मुंबई से, तो मेरे काफी दोस्त है डोंगरी से जिनको मैं जानता हूँ, और उन लोगों को वो थोड़ी स्ट्रीट स्टाइल है मेरे दोस्त वहां के, तो उनके लिए बॉक्सिंग इज जस्ट मारा मारी, तोड़ फोड़ नाक फोड़ना कान फोड़ना, वो लोग बॉक्सिंग टेक्निक्स की बात नहीं करते, उन लोग वो बोलेंगे किसने नाक में से खून निकाला, किसने कान पे मारा, ये सारी चीजें वो लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है उसको मैंने वैसे अज्यूम किया बिकॉज आई वॉज लाइक दिस गाय इज कम फ्रॉम द स्लम्स ऑफ डोंगरी एंड ही इज गेटिंग इनटू प्रोफेशनल बॉक्सिंग राइट नाउ बट इज स्टिल न्यू, and the reason why he wants to get the reason why he wants to get into it because todfod uske dil ke bahut kareeb, that's what he says in the film, todfod mere dil ke bahut kareeb hai. So then I was like, aur mujhe film bhi dikhai thi aadhi jahan tak mera gana aata hai wahan tak mujhe film bhi dikhai gayi thi, तो फिल्म भी मैंने देखी और मैंने बोला कि अब तो मुझे अब काफी इजी हो जाएगा गाना लिखने के लिए। तो मतलब लॉकडाउन का टाइम था उस वक्त और जस्ट चीजें खुली थी, मतलब यू कुड गो आउट टू वर्क एंड ऑल ऐसा। तो मैं राकेश सर को मिला और मैं फरहान भाई को मिला, तो उनका ऐसे मसल्स वसल्स देख के मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ था ये गाना लिखने के लिए, बिकॉज इतनी अच्छी फिजिक बनाई थी उन्होंने। लाइक इट्स डिफिकल्ट टू डू दैट, एंड काफी
क्रेजी
डाइट होता है उसमें और काफी एक्सरसाइजेस, काफी सप्लीमेंट्स, काफी कुछ होता है उसमें। तो मैंने देख के मैंने मैंने बोला कि इस ये गाना तो मतलब तोड़ून टाक ही होना चाहिए पूरा। तोड़ून टाक तो मतलब वर्ड तो वही से आया, फिल्म से आया, बिकॉज इट्स बीन सेड इन द फिल्म सो मेनी टाइम। बट या द लिरिक्स एंड एवरीथिंग ने पूरा मतलब गेम मेरा
बी अ
उसपे
गुड
ये कर
एक्सपीरियंस.
दिया।
वाव, लवली
एब्सोल्युटली,
लवली, थैंक यू सो मच. इट हैज बीन सच ए लवली इवनिंग. थैंक यू सो मच. आई थिंक इट
थैंक
वाज
यू
अ
फॉर हैविंग
वेरी
मी।
एक्सटेंसिव, वेरी इलेबोरेट एंड अ वेरी जैसे दिल से निकला हुआ पूरा कन्वर्सेशन. और
यस यस, यू
यू आर
मेड मी
जस्ट
फील वेरी
अमेजिंग.
कंफर्टेबल, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच.
हाय, मैं हूं द इविल, डू सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट.
Wow, it has been such an enjoyable experience talking to D-Evil. His simplicity and humility were endearing, and his honest, realistic advice for aspiring rappers to be good listeners, open to learning and updating oneself, and yes, follow a discipline which holds true for any artist or individual. Also, the point about having that good communication with your parents, your family is important, and he also stressed on the importance of education. With regards to hip hop, he made a very important statement that hip hop is not just about rapping. There are many other aspects to it which one can explore. Copying someone will also not take you places. It's important to be yourself, because there cannot be anybody like you, right? And what I personally loved was the part about being a responsible artist. You know, even if you are a rapper, being mindful about the lyrics, the content, that really impressed me a lot about him. So guys, share with me your experience of listening to this podcast. Write to me at eva.bhatt@9xmedia.in. You can connect with me on Instagram at evabhattpodcast. Rate and review this podcast on Apple Podcasts. Subscribe to the podcast on Epilog Media, the website, so that you don't miss any episode. You can also enjoy the videos of our previous episodes on the official YouTube channel of 9XM and Spotlamp. Just search 9XM Soundcast on YouTube. I will talk to you guys next Wednesday with a fresh episode. This is me, Eva, signing off for now. You were listening to 9XM Soundcast on Epilog Media. Hey listener, did you check out 9XM Song Secret? A perfect podcast for music lovers, जहां host Shefali Juneja बात करती हैं आपके favorite artists के साथ उनके कुछ secrets जानने. वो secrets क्या हैं? For that, you will have to listen to this cool podcast, 9XM Song Secret.